समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
जो बीज हम बोते हैं उसी का पेड़ उगता है, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन बचपन में मैं उन पेड़ पौधों को देखकर बहुत हैरान होती थी जिन्हें सड़क किनारे, दीवारों में, किसी पत्थर के नीचे से निकलता हुआ देखती थी और समझ ही नहीं पाती थी कि यहाँ इनका बीज किसने बोया होगा कि पौधे निकले। मेरी जिज्ञासा का समाधान मेरी नानी ने किया और बताया कि नन्ही सी गिलहरी होती है ना, अपनी खुराक के लिए बीजों को जमीन में छुपा देती है ताकि वक्त आने पर उन्हें खा सके। लेकिन एक बार छुपाने के बाद भूल जाती है कि किस जगह उसने बीज छुपाए थे। बस वहीं से उस बीज से पौधा, पौधे से पेड़ और पेड़ों से फल मिलते हैं जिससे आने वाली कई पीढ़ियां साल दर साल खाती हैं और फायदा उठाती हैं। ये तो थी बचपन की बात। बड़े होकर इसी गिलहरी ने ये प्रेरणा दी कि हमें भी अपने अच्छे कर्म चुपचाप करते चले जाने चाहिए, फल की परवाह नहीं करनी चाहिए। वक्त आने पर हमारे किए कर्मों का फल हम ही नहीं बल्कि आने वाली कई कई पीढ़ियां सालों साल फायदा उठाती हैं। और ये भी सीखा इस नन्ही सी गिलहरी से कि जैसे किसी भी जीव से हम चाहें तो बहुत कुछ सीख सकते हैं और दुनिया के फायदे के लिए अपनी तरफ से थोड़ा बहुत योगदान तो दे ही सकते हैं। फिलहाल सीखने सिखाने की इन्हीं बातों से आगाज करते हैं FM 100.1 MHz आकाशवाणी गोल्ड पर समाचार सेवा प्रभाग के कार्यक्रम आज सवेरे का। साथ हूं आपके मैं नईम अख्तर और मेरी मुस्कुराती साथी सुभद्रा रामचंद्रन।
हेलो नईम, गुड मॉर्निंग टू यू एंड ऑल आवर लिसनर्स ट्यून्ड इन टू हियर दिस ग्रेट शो। ऑफ कोर्स वी आर रेडी विद अनदर इंटरेस्टिंग सेशन ऑफ न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे। स्टे विद अस एंड एंजॉय। फॉर स्टार्टर्स नईम, लेट्स गिव देम सम न्यूज हेडलाइंस।
जी, आप शुरुआत कीजिए।
Yes, campaigning for sixth phase of elections came to an end last evening. The polling in this phase will take place tomorrow in 58 constituencies, spread over 8 states and union territories. These include 8 seats in Bihar, all 10 seats in Haryana, 1 seat in Jammu and Kashmir, 4 in Jharkhand, all 7 seats in Delhi, 6 in Odisha, 14 in Uttar Pradesh and 8 in West Bengal. The voting will begin at 7 a.m. and end at 6 p.m. Prime Minister, Senior BJP Leader Narendra Modi addressed an election rally in Mahendragarh, Haryana and Patiala in Punjab yesterday. Congress Leader Rahul Gandhi had also addressed a rally in the Mahendragarh constituency of Haryana yesterday. In Delhi, a total of 162 candidates are in the fray, including Manoj Tiwari and Bansuri Swaraj of BJP, Somnath Bharti and Kuldeep Kumar of Aam Aadmi Party, and Kanhaiya Kumar and JP Agarwal of Congress. Over 1 crore 50 lakh voters will decide the political fate of these candidates.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के नेता पहले देशों से दूरी बनाए रखने में विश्वास करते थे, लेकिन हमने दुनिया के देशों के साथ निकटता बनाए रखने की वकालत की। नई दिल्ली में एक मीडिया चैनल द्वारा आयोजित कार्यक्रम सलाम इंडिया में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये देश का दुर्भाग्य था कि किसी को पता भी नहीं चलता था कि उनके प्रधानमंत्री विदेश दौरे पर गए हैं या नहीं। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि वो भारत के लोकतंत्र को बदनाम करने की योजना बना रहे हैं।
In Uttar Pradesh, political parties have intensified campaigning for the seventh and final phase of elections. National President of BJP Jagat Prakash Nadda will campaign in Kushinagar, Balia and Sonbhadra districts, while Chief Minister of State Yogi Adityanath will campaign in Maharajganj, Kushinagar, Devriya and Gorakhpur. Congress spokesperson Abhay Dubey and media in charge of the party CP Rai will address a press conference in Varanasi in favour of party candidate Ajay Rai.
हिमाचल प्रदेश में सातवें और अंतिम चरण में पहली जून को होने वाले लोकसभा चुनाव और 6 विधानसभा उपचुनाव को लेकर प्रचार चरम पर है। भाजपा व कांग्रेस दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारक अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। प्रधानमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी आज हिमाचल प्रदेश के एक दिवसीय चुनावी दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान वो नाहन और मंडी में भाजपा की विजय संकल्प रैलियों को संबोधित करेंगे। दूसरी तरफ कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी 26 मई को शिमला संसदीय क्षेत्र के नाहन और हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के ऊना में चुनावी जनसभाएं करेंगे। इसके अलावा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी 25 मई को शिमला के रोहड़ू में एक जनसभा को संबोधित करेंगे।
President Vladimir Putin has signed a decree allowing Russia to confiscate assets of U.S. companies and individuals to compensate for any Russian assets confiscated in the United States. According to the decree, the Russian Central Bank and Russian entities will have the right to seek legal redress in court in case of the unlawful seizure of properties by the U.S. A special commission of the Russian government will identify U.S. assets or properties, including movable and immovable U.S. properties in Russia, securities, shares in Russian enterprises, and property rights, which can be used to compensate for losses incurred. The Russian government has been given 4 months to introduce amendments to Russian legislation to facilitate the implementation of the decree. U.S. President Joe Biden in April signed into law the Rebuilding Economic Prosperity and Opportunity for Ukrainians Act, which allows the administration to seize the roughly $5 billion in Russian state assets located in the United States.
मौसम विभाग ने अगले 3 दिन तक राजस्थान और गुजरात में अत्यधिक गर्मी की आशंका व्यक्त की है। दिल्ली में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बना हुआ है। देश के पूर्वी हिस्सों में बिजली और गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। अगले 6 दिन तक झारखंड, बिहार, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में आंधी, बारिश और बिजली हो सकती है। वहीं देश के दक्षिणी भागों में आज तेज बारिश जारी रहने की संभावना है। पश्चिम मध्य और उसके निकटवर्ती दक्षिण बंगाल की खाड़ी में कम दबाव के क्षेत्र के शनिवार सुबह तक चक्रवात में बदलने की संभावना है।
Isolated rains continue to lash parts of Kerala since last evening, leaving many low-lying areas inundated. An overcast sky prevails in several areas, and the weather office has indicated that rains are likely to continue till tomorrow. The IMD, in its latest weather report, has issued red alert in the districts of Ernakulam and Thrissur. It has issued orange alert in 8 districts, including the hilly district of Vayanad, Idukki, and Patnamthitta. The weather department said, under the influence of the cyclonic circulation over South Kerala and its neighbourhood, a low-pressure area has formed over Southeast Arabian Sea off Kerala coast. Strong westerly or southwesterly winds at lower levels is likely to continue over Kerala and Lakshadweep region till tomorrow, and its influence, extremely heavy rainfall activities likely to occur.
भारतीय महिला हॉकी टीम FIH प्रो लीग में कल एंटवर्प में बेल्जियम से 2-0 से हार गई। भारत को तीसरे क्वार्टर में 2 गोल से मात खानी पड़ी। बेल्जियम के लिए एलेक्सिया टी सेफ स्टीवंस और लुई डेविट ने ये गोल किए। भारतीय महिला हॉकी टीम की ये हार पिछले मैच में अर्जेंटीना से 5-0 की हार के बाद हुई है। टीम का सामना कल बेल्जियम से होगा।
In IPL cricket, Sunrisers Hyderabad will lock horns with Rajasthan Royals in second qualifier match at M.H. Chidambaram Stadium in Chennai this evening. In the head-to-head 19 battle, Sunrisers Hyderabad have a slight advantage with 10 wins, with Rajasthan having won 9. In this tournament, Sunrisers Hyderabad lost to Kolkata Knight Riders in the qualifier 1 on Tuesday. On the other hand, Rajasthan, who were chart toppers for most of the tournament, lost their position in the latter stages to KKR.
और आज सवेरे में वक्त है अब उन खबरों का जो प्रमुख महानगरों से जुड़ी हुई हैं। चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद से शुरुआत कर रही हैं सुभद्रा।
यस नईम, स्टार्टिंग विद न्यूज फ्रॉम चेन्नई, द कार्कस ऑफ हॉक्सबिल सी टर्टल वॉश्ड अशोर एट इंजमबाकम बीच नियर चेन्नई। द क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज इज फाउंड रेयरली इन चेन्नई एंड अ लाइव वन वाज स्पॉटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन मार्च 2024 बाय अ ग्रुप ऑफ फिशरमैन इन बेसंत नगर। द कार्कस वॉज शॉट बाय कैप्टन रिटायर्ड मोहन रंगनाथन, हु रिसाइड्स नियर By. Supriya Sahu, additional chief secretary to the Tamil Nadu government, confirmed that the carcass is that of a rare hawksbill turtle. The turtle found on coral reef-rich islands such as the Andaman and Lakshadweep usually gets its name from its narrow pointed mouth resembling that of a hawk, which helps it pick sponges from crevices and cracks. The species plays a major role in marine ecosystems and are hunted for their colorful shell called tortoise shell, which is used for jewelry and crafts. State-owned Indian Bank's board has approved a proposal by the bank to raise ₹12,000 crore. In a stock exchange filing, the bank said its board has given the nod to raise equity capital aggregating up to ₹5,000 crore through different modes as QIP, FPO rights issue, or in combination of the approval of the United Union Government, RBI, and in compliance with other statutory regulatory provisions in this regard. Moving to Bengaluru now, three hotels in Bengaluru received threat emails in the early hours yesterday, which were later determined to be a hoax. The emails were sent by an individual identifying himself as Gauli Jual, claiming to be the son of a senior IPS officer. The messages sent to the front desk of major star hotels threatened that bombs had been planted on the premises. The sender alleged that his father had conspired with Pakistan-based ISI and a Tamil Nadu-based political family to carry out the blast, aiming to divert attention from a drug scandal involving the political family from Tamil Nadu. Getting to Hyderabad now. In Telangana, Hyderabad Met Center issued a yellow alert with a forecast of thunderstorms accompanied by lightning and gusty winds of 30 to 40 kilometers in several districts, including Hyderabad, even as several areas in the state grapple with rising temperatures. Met officials informed that despite the forecast of thunderstorms today and tomorrow, the maximum temperatures forecast to cross 45 degrees Celsius at many places from Sunday onwards. Scattered intense storms, lightning and high-speed winds are expected in the coming days in some districts of the state. Nine. What about other news, other metro news?
जी, पहले दिल्ली से शुरुआत करते हैं. दिल्ली में लोकसभा की सभी सात सीटों के लिए चुनाव प्रचार कल शाम 6 बजे खत्म हो गया. विभिन्न राजनीतिक दलों ने राजधानी में रोड शो, जनसभाएं कर मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के हर संभव प्रयास किए. राजधानी में भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के प्रमुख नेताओं की रैलियां हुई. राजधानी में मतदान शनिवार 25 मई को होना है. प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के द्वारका में एक जनसभा को संबोधित किया. केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह ने पश्चिम दिल्ली लोकसभा में एक जनसभा को संबोधित किया. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी भी मंगोलपुरी और सीमापुरी में रैलियों को संबोधित किया. इसके साथ ही आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेताओं ने भी रोड शो किया. दिल्ली पुलिस ने राजधानी में शनिवार को होने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर शहर के विभिन्न भागों में फ्लैग मार्च और पैदल मार्च किया. विशेष पुलिस आयुक्त मधुप तिवारी ने कहा कि पुलिस मतदाताओं के लिए सुरक्षित और अनुकूल वातावरण के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने कहा कि दिल्ली में स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए हर संभव कदम उठाए गए हैं. दिल्ली पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वह अपने क्षेत्र में किसी भी चुनावी कदाचार और प्रलोभन से जुड़े मामले को तुरंत संज्ञान में लाएं. इसकी सूचना दिल्ली पुलिस के नियंत्रण कक्ष के नंबर 112 पर दी जा सकती है. इस बीच शनिवार को दिल्ली, फरीदाबाद और गुड़गांव में मतदान के मद्देनजर शाम 6 बजे तक शराब की दुकानें बंद रहेंगी. इस दौरान लाइसेंस प्राप्त रेस्टोरेंट और बार में भी शराब पर पाबंदी होगी. दिल्ली में 25 मई को मतदान के दिन मेट्रो की सभी लाइनों पर सेवा सुबह 4 बजे से शुरू हो जाएगी. मेट्रो ट्रेन सुबह 6 बजे तक 30 मिनट के अंतराल पर उपलब्ध रहेगी और उसके बाद सभी लाइनों पर पूरे दिन सामान्य परिचालन रहेगा. दिल्ली परिवहन निगम भी 25 मई को 35 रूटों पर बस सेवा का संचालन सुबह 4 बजे से शुरू करेगा. राजधानी के इंडिया हैबिटेट सेंटर में कल संस्कृति मंत्रालय के सचिव गोविंद मोहन ने समागम आर्ट फेस्ट 2024 का उद्घाटन किया. 5 दिवसीय आर्ट फेस्ट में देश के जाने माने चित्रकारों की कलाओं को प्रदर्शित किया गया. इस अवसर पर श्री मोहन ने कहा कि इस आर्ट फेस्ट 7 का उद्देश्य चित्रकारों की कलाओं को एक बड़ा मंच देना और बाजार उपलब्ध करवाना है. उन्होंने कहा कि सरकार देश के सभी चित्रकारों की बेहतरी के लिए काम कर रही है. इंडिया हैबिटेट सेंटर की विजुअल आर्ट गैलरी में 27 मई तक लोग इस आर्ट फेस्ट को देख सकते हैं. इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय आधुनिक कला गैलरी के महानिदेशक संजीव किशोर गौतम, पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित श्याम शर्मा और कई वरिष्ठ चित्रकार शामिल हुए. प्रोफेसर मोहम्मद शकील को जामिया मिलिया इस्लामिया का नया कार्यवाहक कुलपति नियुक्त किया गया है. इससे पहले दिल्ली उच्च न्यायालय ने जामिया मिलिया इस्लामिया के कार्यवाहक कुलपति प्रोफेसर इकबाल हुसैन की नियुक्ति रद्द कर दी थी और एक सप्ताह के अंदर कार्यवाहक कुलपति की नियुक्ति करने का निर्देश दिया था. न्यायमूर्ति तुषार राव गेडिला ने अपने फैसले में कहा था कि प्रोफेसर इकबाल हुसैन की कार्यवाहक कुलपति के रूप में नियुक्ति नियमों के मुताबिक नहीं है. और रुख करते हैं अब मुंबई का. मराठवाड़ा क्षेत्र में सूखे जैसी स्थिति का आकलन करने के लिए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने गुरुवार को छत्रपति संभाजी नगर में एक समीक्षा बैठक की. मुख्यमंत्री ने क्षेत्र में प्रशासन द्वारा किए गए इंतजामों का भी जायजा लिया. बैठक में संरक्षक मंत्री गिरीश महाजन और गुलाब राव पाटिल के साथ साथ क्षेत्र के जिला कलेक्टरों और क्षेत्रीय कलेक्टरों ने भाग लिया. एकनाथ शिंदे ने मीडिया को बताया कि मराठवाड़ा के 1250 गांवों में पानी पहुंचाने के लिए 1800 37 पानी के टैंकरों को काम पर लगाया गया है। उन्होंने आगे कहा कि जानवरों को खिलाने के लिए पर्याप्त चारा था। उन्होंने ये भी कहा कि किसानों को खाद बीज बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने जिला अधिकारियों को बेमौसम बारिश के कारण किसानों को हुए नुकसान का पंचनामा करने का निर्देश दिया है ताकि सरकार सहायता प्रदान कर सके। मुंबई के महालक्ष्मी रेसकोर्स क्षेत्र में 1200 मिलीमीटर व्यास वाले बटरफ्लाई वॉल्व पर मरम्मत कार्य के कारण जी साउथ सेक्शन में कुछ क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति अस्थायी रूप से बंद कर दी जाएगी। जैसे कि ग्रेटर मुंबई नगर निगम द्वारा सूचित किया गया है, बीडीडी चौल, डेलिसल रोड, करी रोड और कई क्षेत्रों में शुक्रवार 24 मई को सुबह 4:30 बजे से सुबह 7:30 बजे तक 3 घंटे के लिए पानी की आपूर्ति निलंबित रहेगी। निचला परल नगर निगम ने इन इलाकों के निवासियों से इस दौरान पानी का सोच समझकर इस्तेमाल करने की भी अपील की है। महाराष्ट्र कांग्रेस विधायक पीएन पाटिल का कोल्हापुर के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया, जहां उनका घर में गिरने के बाद इलाज चल रहा था। वो 71 वर्ष के थे। कोल्हापुर जिले के करवीर विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले पाटिल को रविवार को अपने घर के बाथरूम में गिरने के बाद सिर में गंभीर चोट लगी थी। और एक खबर अब कोलकाता से। लोकसभा चुनाव 2024 के तहत 25वें मतदान के लिए मौन अवधि शुरू हो गई है। 8 संसदीय क्षेत्रों में शनिवार को मतदान होगा। सभी राजनीतिक दलों ने अपने उम्मीदवारों के लिए बड़े पैमाने पर प्रचार किया। इन चरण के चुनावों में बीजेपी 5 और तृणमूल कांग्रेस 3 सीटों पर बचाव कर रही है। और अब महानगरों के मौसम के बारे में बात कर लेते हैं सुभद्रा।
Yes.
दिल्ली में आसमान साफ रहेगा और रात में भी गर्म हवाएं चलेंगी। अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। मुंबई में आसमान साफ रहेगा, न्यूनतम तापमान 28 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। कोलकाता में आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और गरज के साथ बिजली चमकने की भी संभावना है। न्यूनतम तापमान 28 डिग्री दर्ज किया गया है, जबकि अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है।
Chennai is expected to have generally cloudy sky with light rain. The minimum temperature was 28 degrees Celsius. The maximum will be around 36. Bengaluru is expected to have generally cloudy sky with 1 or 2 spells of rain or thunder showers. The minimum temperature will be 22 degrees Celsius. Maximum will be around 32 degrees. Hyderabad is expected to have partly cloudy sky with the possibility of rain or thunderstorm or dust storm. The temperature will hover between a minimum of 27 degrees and a maximum of 37 degrees Celsius.
और इसके साथ ही एक और चीज भी मैं अपनी तरफ से चाहूंगी कि सभी श्रोताओं से शेयर कर ली जाए, क्योंकि जो मौसम आपने बताया जिन महानगरों को और जो मैंने बताया, उन सबसे एक चीज निकल करके आती है कि गर्मी जो पड़ रही है वो बहुत जबरदस्त तरीके से पड़ रही है। तो अपना बचाव करना है, बीमारी से बचना है, तो ज्यादा नहीं, 2-3 चीजों का खास ख्याल रखें। पानी जितना पी सकते हैं उतना ज्यादा पिए, चाहे भले ही आप एयर कंडीशन रूम में बैठे हो तो भी पानी के पीने में कमी ना करें। और जहां तक कोशिश हो इस तपती हुई झुलसाती हुई धूप में बाहर ना निकले, कोशिश करें घर के अंदर ही रहें।
यस ऑफ कोर्स, एंड हैव लॉट्स ऑफ लेमन वाटर, यू नो, लेमन जूस एंड हाइड्रेटिंग ड्रिंक्स।
नहीं, आप लेमन
यू आल्सो वेयरिंग समथिंग, शी इज एक्चुअली वर्न समथिंग व्हिच इज, शी लुक्स लाइक लेमन टुडे फ्रेंड्स।
ठीक है, अब आपसे बच के रहना पड़ेगा। चलिए अब चलते हैं अपने इतिहास की तरफ। 24 मई को आज के दिन कहां कहां क्या क्या खास हुआ, कुछ चीजें शेयर कर लेते हैं। 1276 में आज ही के दिन मैग्नस लाडुलस स्वीडन के राजा बने। 1543 में पोलैंड के खगोलविद निकोलस कॉपरनिकस का निधन हुआ। उन्होंने सिद्धांत दिया था कि पृथ्वी समेत सभी ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं और पृथ्वी अपनी धुरी पर भी घूमती है। 1787 में अमरीकी संविधान सभा का उद्घाटन हुआ था।
1830, the very famous nursery poem Mary Had a Little Lamb was first published by Sarah Josepha Hale. And 1832, the first empire of Greece was declared at the London Conference. And of course, it was internationally recognized by the Treaty of Constantinople, where it also gained complete freedom from the Ottoman Empire. And friends, in 1930, Pluto was announced to be the name chosen for the newly discovered ninth planet, previously called Planet X, by Roger Lovell Putnam, trustee of the Lovell Observatory, Flagstaff, Arizona. And in 1941, the German battleship Bismarck sank the British battle cruiser HMS Hood in the North Atlantic, killing all but three of the 1,418 men on board.
इसी बीच 1883 में ब्रुकलिन और मैनहट्टन को जोड़ने वाले ब्रुकलिन ब्रिज को यातायात के लिए खोला गया था. 1915 में थॉमस अल्वा एडिसन ने टेलीस्क्राइब का आविष्कार किया था. 1931 में पहली वातानुकूलित यात्री ट्रेन अमेरिका के वाल्टमोर ओहियो मार्ग पर चलाई गई थी. 2001 में नेपाल के 15 वर्षीय शेरपा तेम्बा शेरी माउंट एवरेस्ट की चोटी को फतह करने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बने.
And friends, the very first broadcast of continental singing competition titled Eurovision was started in the year 1956. The place was Lugano in Switzerland, with seven European nations vying for the top tune or the winning spot. And in 1958, United Press International was formed through a merger of the United Press and the International News Service. And in 1976, Britain and France opened Transatlantic Concorde Supersonic Transport Service to Washington.
और सुभद्रा, अब हम अपने कार्यक्रम के बिल्कुल आखिरी चरण में हैं, जिसमें हम याद कर रहे हैं कुछ ऐसी हस्तियों को जिनकी आज पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन है. शुरुआत करते हैं एक बहुत बड़े नाम से, जिनका नाम है गुरु हनुमान. इनका बारे में कोई परिचय देने की जरूरत नहीं, हमारे सभी श्रोता तकरीबन जानते होंगे कि भारत के महान कुश्ती प्रशिक्षक और पहलवान थे गुरु हनुमान. उन्होंने सारी दुनिया में भारतीय कुश्ती को महत्वपूर्ण स्थान दिलाया. उनकी कुश्ती के क्षेत्र विशेष में उपलब्धियों के कारण इन्हें भारत सरकार ने 1988 में द्रोणाचार्य पुरस्कार और 1983 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया था.
1875, birth anniversary of Syed Ahmed Khan, who founded the Anglo-Oriental School in Aligarh, which of course was renamed as Aligarh Muslim University in 1920, and Kartar Singh Sarabha was a prominent revolutionary freedom fighter from Punjab who played a significant role in the Indian independence movement. He was born this day in 1896 in Sarabha village, Ludhiana district, Punjab, and he sacrificed his life for the cause of Indian independence at a young age.
सर सैयद अहमद खान के इस कॉन्ट्रीब्यूशन को देखकर के मुझे एक शेर याद आ रहा है. मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया. इन्होंने एक छोटी सी ईंट रखी थी जिसके आज इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी बनी है. और जो शेर मैंने अभी पढ़ा, उस शेर का एक और भी रेफरेंस है. वो रेफरेंस क्या है, हम अभी अपने श्रोताओं से उसको भी शेयर करते हैं.
उसे क्या सुनाऊं मैं, दिल रुबा तेरे सामने मेरा हाल है, तेरी एक निगाह की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है, तुझे क्या सुनाऊं.
इस शेर को सुनकर और इस गीत की इन पंक्तियों को सुनकर के हमारे श्रोता समझ गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं मजरूह सुल्तानपुरी की, जिनकी आज पुण्यतिथि है. 1 अक्टूबर 1919 को उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था और 24 मई यानी आज के दिन 2000 में इनका निधन हुआ था. भारतीय हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध शायर ही नहीं, प्रसिद्ध गीतकार ही नहीं, बल्कि बहुत बड़े शायर भी रहे हैं मजरूह सुल्तानपुरी, जिनका असली नाम असरारुल हसन खान था. इनके लिखे हुए कलाम में जिंदगी के अनछुए पहलुओं से रूबरू कराने की जबरदस्त क्षमता थी. मजरूह के कलम से जो स्याही निकली वो नज्मों के रूप में, एक ऐसी गाथा के रूप में चारों तरफ फैली जिसने उर्दू शायरी को महज मोहब्बत के सब बागों से निकालकर दुनिया के दीगर सफेद और स्याह पहलुओं से भी जोड़ा. इसके साथ ही उन्होंने रूमानियत को भी नए ढंग और ताजगी प्रदान करने की कोशिश की. तकरीबन 300 फिल्मों में 4000 से ज्यादा गीतों की इन्होंने रचना की और 4 दशक से ज्यादा लंबे समय तक इन्होंने अपना काम किया हिंदी सिनेमा में. इनके योगदान को देखते हुए अन्य पुरस्कारों के साथ साथ 1993 में उन्हें फिल्म जगत के सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया.
Soul and rhythm and blues singer, dancer, entertainer Tina Turner broke a lot of hearts, friends, last year this day when she left this world. Born Anna May Bullock, Tina was one of the most successful recording artists of all time. This talented lady insisted on adding rock songs by the Beatles and the Stones to her repertoire, reached an enormous new audience. She fused the old-fashioned soul singing with new-wave synth-based pop that earned her several Grammy Awards. A tune to remember her. fan friends, we lost several American blues players this day. Blues guitarist Elmo James in 1965, blues harmonica player, singer-songwriter Sonny Boy Williamson, the second in 1963, and jazz pianist Duke Ellington in 1974.
आज ही जयंती है एक बहुत 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 बड़े नाम के, जिनका नाम है काजी नजरुल इस्लाम। हमारे वो सभी श्रोता जो संगीत के शौकीन हैं, इस नाम से हरगिज अपरिचित नहीं हो सकते हैं। प्रसिद्ध बांग्ला कवि, संगीत सम्राट, संगीतज्ञ और दार्शनिक थे काजी नजरुल इस्लाम। नजरुल इस्लाम बांग्ला भाषा के अन्यतम साहित्यकार, देश प्रेमी और इसके अलावा बांग्लादेश के राष्ट्रीय कवि भी हैं। उन्हें 1960 में साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए भारत सरकार ने पद्म भूषण से सम्मानित किया था। काजी नजरुल इस्लाम ने लगभग 3000 गानों की रचना की और साथ ही ज्यादातर गानों को आवाज भी दी। इनके संगीत को आज भी नजरुल संगीत या नजरुल गीति के नाम से जाना जाता है।
अल्लाह के जे पाए जाए हजरत के भालो बेशे, अल्लाह के जे पाए जाए।
And friends, Bobby, that's an American singer-songwriter, Bob Dylan, who was hailed as a Shakespeare of his generation, celebrates his 83rd birthday today. Born Robert Allen Zimmerman, Bob was the first to try out folk tunes with electric guitars. And in the year 1965, Dylan scandalized many of his folky fans by recording the half-acoustic electric album, Bringing It All Back Home, backed by a nine-piece band. And 2016, October, Dylan was awarded the Nobel Prize for Literature by the Swedish Academy for having created new poetic expressions within the great American song tradition. Happy birthday, Bob.
Vanished from my hand, left me blindly here to stand, but still not sleeping. My weariness amazes me, I am branded on my feet, I have no one to meet.
Country diva Roseanne Cash celebrates her birthday today. Daughter of country legend Johnny Cash, Roseanne is noted for clear, ringing voice and ability to blend country songs with popular music. A tune for her. Here goes.
In a little cabaret in a South Texas border town sat a boy and his guitar, and the people came from all around and all the girls from there to Austin. We're slipping away from home and putting jewelry in the hall to take the trip.
आज जन्मदिन है बछेंद्री पाल का, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला। पहाड़ों की रानी बछेंद्री पाल पर्वत शिखर एवरेस्ट की ऊंचाई को छूने वाली दुनिया की पांचवी महिला पर्वतारोही हैं। उन्होंने 23 मई 1984 को दिन के 1:07 पर यह कारनामा अंजाम दिया था। 1990 की गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में उनका नाम शामिल किया गया। 1985 में उन्हें पद्मश्री, 1986 में अर्जुन पुरस्कार और 1994 में नेशनल एडवेंचर अवार्ड दिया गया था। और आज ही सुभद्रा दिन है राजेश रोशन लाल नागरथ का, जो एक मशहूर संगीतकार हैं हिंदी फिल्मों के। 1975 से अपना करियर शुरू करने वाले राजेश रोशन ने लगभग सभी बड़े निर्देशकों के साथ काम किया। उन्हें हिंदी सिनेमा में पहचान जूली फिल्म के गाने से मिली। इस गाने से उन्हें पहला फिल्मफेयर बेस्ट संगीत निर्देशक का अवार्ड भी मिला। और जो गीत अभी आप बैकग्राउंड में सुन रहे हैं, ये उन्हीं के भतीजे ऋतिक रोशन की डेब्यू फिल्म के लिए उन पर फिल्माया गया था, जो उन्हीं के भाई राकेश रोशन ने फिल्म बनाई थी। सुनते हैं इस गाने को।
अरे काली घटाएं पर खास सावन हो, काली घटाएं पर खास सावन, ये तो सब अफसाने हैं। ताजा ताजा कली खिली है, हम उसके दीवाने हैं।
वक्त खत्म हो रहा है, वक्त ये कह रहा है कि चलिए अब इजाजत ले लीजिए। तो अपने सभी सुनने वालों से हम कहेंगे कि आप सुनते रहिए न सिर्फ कार्यक्रम आज सवेरे हर रोज, लेकिन आकाशवाणी गोल्ड एफएम 100.1 MHz पर हमारे इस कार्यक्रम के साथ साथ और कार्यक्रमों को भी इजाजत दीजिए। अभी नई मक्तौरा सुभद्रा को
थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे, नमस्कार।